एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
नमस्कार, आज ज्ञान गोष्ठी में हम एक ऐसे विचारक की दुनिया में उतर रहे हैं जिन्होंने हमें, आप कह सकते हैं, हमारे ही मन के अनदेखे नक्शे दिखाए। कार्ल गुस्ताफ युंग।
हाँ, कार्ल जुंग स्विस मनोचिकित्सक थे, विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं, पर शायद इससे कहीं ज्यादा थे। वो एक तरह से आत्मा की खोजी।
बिल्कुल सही कहा, वो शख्स थे जिन्होंने, मतलब, सिगमंड फ्रॉयड की छाया से निकलकर एक बिल्कुल अलग राह चुनी।
सही, फ्रॉयड जहां मन की तहों में दमित इच्छाओं को देख रहे थे, जुंग को वहां कुछ और दिखा। सदियों पुराने मिथक, प्रतीक, पूरी इंसानियत की एक साझा विरासत।
हाँ, वो सामूहिक अचेतन वाली बात, कलेक्टिव अनकॉन्शियस।
बिल्कुल, और आर्किटाइप्स, ये सब उनके बड़े आइडियाज थे।
और यही बात उन्हें आज भी इतनी जरूरी बनाती है ना? हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां बाहरी शोर बहुत ज्यादा है। शायद हम अपने अंदर की आवाज सुनना जैसे भूल से गए हैं। जुंग के विचार हमें उसी अंदरूनी दुनिया से, आप कह सकते हैं, दोबारा जुड़ने का रास्ता दिखाते हैं।
सही कहा, तो चलिए आज उनकी सोच की गहराइयों को समझने की कोशिश करते हैं।
बिल्कुल, शुरू कहां से करें, उनके समय से?
हाँ, वो जरूरी है। जुंग का जन्म हुआ 1875 में। वो एक बड़ा दिलचस्प दौर था। एक तरफ तो 19वीं सदी का विज्ञान, तर्क, भौतिकवाद सब चरम पर था।
हाँ, जैसे डार्विन आ गए थे, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही थी, टेलीफोन, बल्ब।
बिल्कुल, लगता था कि इंसान अब हर रहस्य सुलझा लेगा। पर दूसरी तरफ एक तरह की आध्यात्मिक बेचैनी भी थी, खालीपन सा।
अच्छा।
हाँ, नीचे जैसे दार्शनिक कह रहे थे कि ईश्वर मर चुका है, पुरानी मान्यताएं वो हिल रही थी।
यानी बाहर से तरक्की, लेकिन अंदर से एक एक सवाल, एक खोज।
ने बाद में छाया कहा, शैडो।
शैडो, हाँ। तो जंग का काम इसी उथल पुथल के बीच पनप रहा था।
हाँ, मनोविज्ञान तो तब बिल्कुल नया नया था। फ्रायड का दबदबा था वियना में, लेकिन साथ ही ये मॉडर्निज्म का भी दौर था। पिकासो कला में, जेम्स जॉयस साहित्य में, सब पुरानी सीमाओं को तोड़ रहे थे।
तो जंग का फ्रायड से अलग होना, वो सिर्फ एक पर्सनल झगड़ा नहीं था, वो उस जमाने की हवा का हिस्सा था।
काफी हद तक, हाँ बिल्कुल, वो कुछ नया रचने की जो भावना थी उसका हिस्सा था। वो सिर्फ फ्रायड या एडलर जैसे मनोविश्लेषकों से ही नहीं जुड़े थे।
अच्छा।
बल्कि हर्मन हेस, थॉमस मान जैसे लेखक, विलियम जेम्स जैसे दार्शनिक, ये सब लोग भी तो अपने अपने तरीके से उसी बिखराव और अर्थ की तलाश से जूझ रहे थे जो आधुनिक इंसान महसूस कर रहा था।
ये तो हुआ कॉन्टेक्स्ट। अब जरा उनके निजी जीवन पर आते हैं। बचपन कैसा था उनका? कहते हैं बचपन की बड़ी छाप रहती है।
बिल्कुल रहती है। उनका जन्म हुआ स्विट्जरलैंड के एक छोटे से गांव किसविल में। पिता पादरी थे, पर मजे की बात यह है कि वो खुद अपने विश्वास को लेकर थोड़ा डाउट में रहते थे।
अच्छा, पादरी और खुद डाउट में।
हाँ, और माँ एक ऐसे परिवार से थीं जहां कहते हैं कुछ पराप्राकृतिक या असाधारण मानसिक अनुभव आम थे।
अरे वाह, ये तो बड़ा ही अनोखा मिक्स है, धर्म और रहस्यवाद एक ही घर में।
हाँ, और इसका जुंग पर बहुत गहरा असर पड़ा। वो बचपन में काफी अकेले रहते थे और उन्हें अक्सर लगता था कि उनके अंदर दो लोग हैं।
दो लोग मतलब?
एक तो वो आम स्कूली बच्चा जो बाहर की दुनिया में जीता था, और दूसरा एक ज्यादा गहरा, ज्यादा पुराना, कालातीत सा व्यक्तित्व। उनके सपने बहुत बहुत विविड होते थे। वो लकड़ी की छोटी छोटी मूर्तियां बनाते थे, उनके साथ अपने कुछ सीक्रेट रिचुअल्स करते थे। शायद यहीं से उनके मन में ये बात आई कि अचेतन की अपनी एक अलग इंडिपेंडेंट दुनिया होती है।
और उनकी पढ़ाई, डॉक्टर कैसे बने, मनोचिकित्सा में कैसे आए?
उन्होंने बेसल यूनिवर्सिटी से मेडिसिन पढ़ी। कहते हैं एक सपना देखा था, उसके बाद उन्होंने ये फैसला किया।
सपने से करियर का फैसला।
हाँ, जुंग की दुनिया में सपनों का बहुत महत्व था। खैर, असली मोड़ तब आया जब वो ज्यूरिख के मशहूर बुर्गहोल्ज़ली मेंटल हॉस्पिटल में काम करने लगे, यूजीन प्लेयर के अंडर।
ब्लेयर, ये नाम सुना है।
हाँ, बहुत बड़े मनोचिकित्सक थे। वहां जुंग ने वर्ड एसोसिएशन टेस्ट पर काम किया, शब्द साहचर्य परीक्षण।
अच्छा, ये क्या था, थोड़ा समझाएंगी?
हाँ जरूर। इसमें बेसिकली लोगों को एक शब्द सुनाया जाता था और उनसे पूछते थे कि उनके मन में फौरन कौन सा दूसरा शब्द आता है। जुंग ने नोटिस किया कि कुछ खास शब्दों पर लोग या तो अटक जाते थे, या देर लगाते थे, या कोई अजीब सा शब्द बोल देते थे। इससे उन्होंने ये समझा कि हमारे अचेतन में कुछ इमोशनल नॉट्स होती हैं, भावनात्मक गांठें, जिन्हें उन्होंने कॉम्प्लेक्स कहा। ये कॉम्प्लेक्स हमारी सोच हमारे व्यवहार पे असर डालते हैं।
अच्छा,
तो यहीं से कॉम्प्लेक्स का आइडिया आया।
हाँ,
और इसी काम से उन्हें काफी पहचान मिली और फ्रॉइड का ध्यान भी उन पर गया।
और उनकी डॉक्टरेट थीसिस वो भी कुछ अलग थी सुना है।
हाँ, वो भी काफी दिलचस्प है। उनकी पीएचडी थीसिस तथाकथित ऑकल्ट फिनोमेना मतलब रहस्यमयी लगने वाली घटनाओं के मनोवैज्ञानिक आधार पर थी।
अरे,
ये दिखाता है कि वो शुरू से ही उन चीजों में इंटरेस्टेड थे जिन्हें साइंस अक्सर नजरअंदाज कर देता है। वो जानना चाहते थे कि इन एक्सपीरियंसेस के पीछे का साइकोलॉजिकल सच क्या है। तर्कहीन लगने वाली चीजों पर भी वैज्ञानिक नजर।
तो यहां से जुंग के अपने सिद्धांत पन्ने शुरू हुए। उनका विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान, सबसे बड़े आइडियाज कौन से थे जिसने उन्हें फ्रॉइड से एकदम अलग कर दिया?
मेरे ख्याल से सबसे बड़ा, सबसे क्रांतिकारी विचार था सामूहिक अचेतन का, कलेक्टिव अनकॉन्शियस।
कलेक्टिव अनकॉन्शियस, हाँ।
फ्रॉइड मानते थे कि हमारा अचेतन जो है वो हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस से बनता है, भूली हुई यादें, दमित इच्छाएं, ये सब। जुंग ने कहा नहीं, इसके नीचे एक और बहुत गहरा लेवल है।
अच्छा,
हाँ, जो हमें विरासत में मिला है, पूरी मानव जाति का साझा है। ये हमारी साइकोलॉजिकल जड़ें हैं जो हम सबको, पूरी ह्यूमैनिटी को आपस में जोड़ती हैं।
पूरी मानव जाति का साझा अचेतन, ये तो सोचने में कितना बड़ा, कितना गहरा विचार है।
है ना? इसे ऐसे समझें जैसे हमारे शरीर की एक बेसिक बनावट होती है ना, जो सब इंसानों में एक जैसी है, दो हाथ दो पैर।
हाँ,
वैसे ही हमारे मन की भी एक गहरी बुनियादी संरचना है और इसी सामूहिक अचेतन में रहते हैं आर्किटाइप्स।
आर्किटाइप्स, ये शब्द तो बहुत सुना आजकल।
हाँ, ये मूल पैटर्न्स हैं, आदिम छवियां जो दुनिया भर की कहानियों में, मिथकों में, सपनों में, आर्ट में बार बार उभर कर आती हैं।
जैसे कि कुछ उदाहरण।
जैसे नायक का आर्किटाइप, हीरो जो चुनौतियों से लड़ता है, या फिर छाया, शैडो, हमारा वो डार्क साइड जिसे हम मानना नहीं चाहते। एनिमा और एनिमस मतलब पुरुष के मन में बसा स्त्री तत्व और स्त्री के मन में बसा पुरुष तत्व। बूढ़ा ज्ञानी आदमी या औरत, वाइज ओल्ड मैन वुमन, माँ ग्रेट मदर, किसी खोज पर निकलना द क्वेस्ट, ये सब आर्किटाइप्स हैं। ये हमारे अनुभवों को अनजाने में शेप देते हैं।
तो ये आर्किटाइप्स हमारे अंदर पहले से मौजूद हैं, जैसे कोई सॉफ्टवेयर।
हाँ, कह सकते हैं। एक तरह से जन्मजात मानसिक झुकाव हैं ये, जैसे खाली बर्तन हो जिन्हें हमारी जिंदगी के अनुभव भरते हैं। और जुंग का एक और बहुत बड़ा विचार इसी से जुड़ा है, इंडिविजुएशन, व्यक्तिकरण।
इंडिविजुएशन, इसका क्या मतलब हुआ?
ये जीवन भर चलने वाली एक प्रक्रिया है, सेल्फ रियलाइजेशन की, आत्मखोज की।
ओके,
इसका मतलब है अपने अंदर के सारे हिस्सों को, चेतन और अचेतन, रोशनी और अंधेरा मतलब शैडो, मैस्कुलिन और फेमिनिन, इन सबको पहचानना, एक्सेप्ट करना और उन्हें इंटीग्रेट करके एक पूरा यूनिक व्यक्ति बनना।
यानी सिर्फ वो मुखौटा पहनकर नहीं जीना जो समाज हमें पहनाना चाहता है।
बिल्कुल, वो तो परसोना है। इंडिविजुएशन है वो बनना जो हम असल में हैं, अपनी पूरी संभावनाओं को पाना। ये जुंग के मनोविज्ञान का शायद सबसे सबसे जरूरी लक्ष्य है।
ये तो बहुत गहरी बात है, खुद को गढ़ने की, पूरा होने की एक यात्रा। और उन्होंने फ्रॉइड के लिबिडो को भी अलग तरह से देखा था।
हाँ, ये भी एक बड़ा डिफरेंस था। फ्रॉइड के लिए लिबिडो क्या थी? मेनली सेक्सुअल एनर्जी।
हाँ,
जुंग ने कहा नहीं, ये सिर्फ सेक्स एनर्जी नहीं है, ये जनरल लाइफ फोर्स है, एक साइकिक एनर्जी जो क्रिएटिविटी में लग सकती है, स्पिरिचुअलिटी में लग सकती है, पर्सनल ग्रोथ में लग सकती है। इसका दायरा बहुत बड़ा है।
और वो इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट वाली बात, वो भी जुंग की ही देन है।
हाँ जी, बिल्कुल। उन्होंने साइकोलॉजिकल टाइप्स का सिद्धांत दिया, मनोवैज्ञानिक प्रकार। इसमें उन्होंने बताया कि कुछ लोगों की एनर्जी अंदर की ओर मुड़ी होती है, इंट्रोवर्ट अंतर्मुखी, और कुछ की बाहर की ओर, एक्सट्रोवर्ट बहिर्मुखी। और साथ ही उन्होंने चेतना के चार फंक्शन बताए, थिंकिंग सोचना, फीलिंग महसूस करना, सेंसेशन संवेदना, और इंट्यूशन अंतर्ज्ञान।
अच्छा, ये चार।
हाँ, और इसी के आधार पर बाद में वो मायर्स ब्रिग्स टेस्ट बना, MBTI, जो आजकल इतना पॉपुलर है।
हाँ हाँ, MBTI तो बहुत लोग करते हैं। तो यंग ने हमें खुद को और दूसरों को समझने के नए टूल्स दिए। और प्रतीक, सिंबल्स, उनके लिए सिंबल्स का क्या मतलब था?
ये भी फ्राइड से अलग था। फ्राइड मानते थे कि सिंबल अक्सर दबी हुई इच्छाओं के छिपे हुए संकेत होते हैं, कोड होते हैं।
हाँ,
और जुंग के लिए सिंबल इससे कई ज्यादा थे, वो जिंदा थे, मल्टीलेयर्ड थे। वो सिर्फ छिपी हुई चीज़ों का पता नहीं देते, बल्कि हमें उस रियलिटी से जोड़ते हैं जो तर्क और बुद्धि से परे है। सपने, मिथक, कला, ये सब सिंबल से भरे हैं जो हमें गहरे अर्थों तक ले जा सकते हैं।
और एक और बहुत फैसिनेटिंग आइडिया है सिंक्रोनिसिटी। वो क्या है?
सिंक्रोनिसिटी,
हाँ,
मतलब अर्थपूर्ण संयोग, मीनिंगफुल कोइंसिडेंस।
मीनिंगफुल कोइंसिडेंस,
हाँ, जब आपके मन में कोई ख्याल चल रहा हो या कोई सपना देखा हो,
हाँ,
और ठीक उसी समय बाहरी दुनिया में कुछ ऐसा हो जाए जिसका उससे कोई डायरेक्ट कॉज इफेक्ट वाला रिश्ता ना हो, पर आपको लगे कि इन दोनों घटनाओं के जुड़ने का कोई कोई गहरा मतलब है।
जैसे?
कोई उदाहरण?
जैसे आप किसी पुराने दोस्त को बहुत शिद्दत से याद कर रहे हो जिसे सालों से नहीं मिले, और अचानक उसका फोन आ जाए।
अरे हाँ, ऐसा होता है कभी कभी।
जो मानते थे कि ये सिर्फ चांस नहीं है, ये शायद मन और बाहरी दुनिया के बीच किसी गहरे अनदेखे कनेक्शन का इशारा है, एक अकॉजल कनेक्टिंग प्रिंसिपल। वाह, ये सारे विचार तो वाकई मन को झकझोर देते हैं। जुंग ने इन्हें अपनी किन किताबों में विस्तार से समझाया? उनकी मुख्य रचनाएं कौन सी हैं?
उनका लेखन बहुत बहुत विशाल है और सब आपस में जुड़ा हुआ है, लेकिन कुछ किताबें खास हैं। एक तो है साइकोलॉजी ऑफ द अनकॉन्शियस, जो 1912 में आई थी। बाद में इसका नाम हुआ सिंबल्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन।
अच्छा।
इसी किताब की वजह से उनका फ्रॉयड से ब्रेकअप हुआ। इसमें उन्होंने लिबिडो को लाइफ फोर्स बताया और मिथकों में जो यूनिवर्सल पैटर्न थे उन्हें दिखाया। ये एक तरह से उनका इंडिपेंडेंस का डिक्लेरेशन था।
फ्रॉयड से अलग होने के बाद उन्होंने अपनी राह पक्की कर ली इस किताब से। और कौन सी किताबें अहम हैं?
साइकोलॉजिकल टाइप्स 1921 बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें वो इंट्रोवर्शन, एक्सट्रोवर्शन और चार फंक्शंस की बात करते हैं। फिर उनकी बात की किताबें हैं जैसे द आर्किटाइप्स एंड द कलेक्टिव अनकॉन्शियस और एऑन। इनमें उनके मैच्योर आइडियाज मिलते हैं आर्किटाइप्स पर, सेल्फ पर, यानी जो हमारा पूरा व्यक्तित्व है उसका केंद्र। इन सब पर बहुत गहरी बातें हैं।
और वो किताब जो आम पाठक के लिए लिखी गई थी, सुना है ऐसी भी एक किताब है?
हाँ, अपने जीवन के बिल्कुल आखिर में उन्होंने मैन एंड हिज सिंबल्स 1964 पर काम शुरू किया था, जो उनकी मौत के बाद छपी। ये उनके जो कॉम्प्लेक्स विचार हैं उन्हें आसान भाषा में समझाने की एक कोशिश है।
और उनकी ऑटोबायोग्राफी, मेमोरीज, ड्रीम्स, रिफ्लेक्शंस?
हाँ, वो तो है ही, पर वो कोई टिपिकल ऑटोबायोग्राफी नहीं है। उसमें बाहरी घटनाओं से ज्यादा उनकी अंदरूनी यात्रा, उनके विचारों का विकास, इसका जिक्र है।
और एक किताब जिसका जिक्र आजकल बहुत होता है, द रेड बुक, वो क्या चीज है?
हाँ हाँ, द रेड बुक, लिबरनोवस, ये उनकी सबसे सबसे पर्सनल और शायद सबसे मिस्टीरियस किताब है।
मिस्टीरियस?
हाँ, फ्रॉयड से अलग होने के बाद जुंग एक बहुत गहरे मानसिक और भावनात्मक संकट से गुजरे थे। करीब 1913 से लेकर कई सालों तक उन्होंने इसे अचेतन के साथ टकराव का, कन्फ्रंटेशन विद द अनकॉन्शियस।
अच्छा।
इस दौरान उन्होंने अपने सपनों, अपनी कल्पनाओं, अपने विजन्स को लिखना और पेंट करना शुरू किया। बहुत खूबसूरत पेंटिंग्स भी हैं उसमें। यही है रेड बुक। ये दशकों तक उनके परिवार ने छुपा कर रखी, 2009 में जाके पब्लिश हुई।
बाप रे, इतने सालों बाद।
हाँ, और माना जाता है कि उनके जो बाद के सारे बड़े सिद्धांत हैं ना, वो इसी अनुभव और इसी किताब की उपज हैं। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक आर्टवर्क है, उनके अपने इंडिविजुएशन की प्रक्रिया का एक जिंदा रिकॉर्ड।
कमाल है। अच्छा, फ्रॉयड से उनके रिश्ते पर वापस आते हैं, ये उनके लिए कितना कितना बड़ा मोड़ था?
बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा। सोचिए, जब वो 1907 में पहली बार मिले तो कहते हैं उनकी बातचीत 13 घंटे चली थी, नॉन स्टॉप।
13 घंटे पहली मुलाकात?
हाँ, 13 घंटे। फ्रॉयड उन्हें अपना क्राउन प्रिंस मानते थे, अपना वारिस, जो उनके साइको एनालिसिस के आंदोलन को आगे ले जाएगा। और शुरू में जुंग भी फ्रॉयड से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, पिता जैसा मानते थे उन्हें।
लेकिन फिर रास्ते अलग हो गए, मुख्य वजह क्या रही आखिर?
जैसा हमने पहले बात की, एक तो वो लिबिडो वाली बात। जुंग फ्रॉयड के इस आइडिया से सहमत नहीं थे कि इंसान की हर हरकत के पीछे, हर न्यूरोसिस के पीछे सिर्फ सेक्सुअलिटी है। और दूसरी बड़ी बात थी धर्म, मिथक और आध्यात्मिकता को लेकर नजरिया। फ्रॉयड इन सबको या तो इल्यूजन मानते थे या दमित इच्छाओं का नतीजा। जुंग को इनमें गहरा मनोवैज्ञानिक अर्थ, गहरे सत्य दिखाई देते थे। उन्हें लगता था फ्रॉयड इन्हें रिजेक्ट करके कुछ बहुत जरूरी चीज मिस कर रहे हैं।
तो ये सिर्फ थ्योरी का मतभेद नहीं था, ये दुनिया को देखने के नजरिए का फर्क था।
बिल्कुल। और जब 1912 में जुंग की वो किताब आई, साइकोलॉजी ऑफ द अनकॉन्शियस, तो बात बिगड़ गई। 1913 में उनका रिश्ता पूरी तरह टूट गया।
ये टूटना उनके लिए सिर्फ बौद्धिक नहीं रहा होगा यकीनन।
बिल्कुल नहीं, ये उनके लिए एक बहुत बड़ा पर्सनल क्राइसिस था। आइसोलेशन का दौर था। इसी संकट के दौरान उन्होंने वो अपनी अंदरूनी दुनिया की गहरी यात्रा शुरू की जो रेड बुक में दिखती है। उन्होंने एडलर जैसे फ्रॉइड से अलग हुए दूसरे लोगों से भी बात की, पर उनके रास्ते भी अलग ही रहे।
और बाद में और किन लोगों से उनका संवाद रहा?
बाद में उन्होंने बहुत अलग अलग फील्ड के लोगों से संवाद किया। मिर्सिया एलियाडे जो धर्मों के इतिहासकार थे, जोसेफ कैम्बल जो पौराणिक कथाओं के एक्सपर्ट थे, यहां तक कि फिजिक्स के नोबेल विजेता वोल्फगैंग पाउली से भी उनका गहरा बौद्धिक रिश्ता था। सिंक्रोनिसिटी का विचार कुछ हद तक पाउली के साथ उनकी बातचीत से ही निकला।
मतलब उनका दायरा सिर्फ मनोविज्ञान तक ही सीमित नहीं था, वो तो कल्चर, हिस्ट्री, फिजिक्स सबसे जुड़ रहे थे। आज उनकी लेगेसी क्या है, उनका असर कहां कहां देखते हैं हम?
उनकी सीधी विरासत तो है एनालिटिकल साइकोलॉजी, जो आज भी दुनिया भर में प्रैक्टिस की जाती है। ज्यूरिक में उनका इंस्टीट्यूट है और भी कई जगहों पर है, लेकिन उनका जो इनडायरेक्ट असर है वो शायद और भी बड़ा है।
जैसे कि
कहां पर? जैसे हमने जोसेफ कैम्बल की बात की, उन्होंने जूंग आर्किटाइप्स को, खासकर हीरो की यात्रा वाले आइडिया को इतना पॉपुलर बनाया। जॉर्ज लुकास ने खुद कहा है कि स्टार वॉर्स बनाते वक्त वो कैम्बल और जूंग से बहुत प्रभावित थे।
अरे वाह, स्टार वॉर्स में जूंग?
हाँ, साहित्य में देखिए, हर्मन हेस से लेके उर्सुला के लेगिन तक कितने ही लेखकों ने इंडिविजुएशन की थीम को, शैडो से लड़ने की बात को अपने उपन्यासों में बुनाया है।
और वो मायाज, ब्रिग्स टेस्ट, MBTI, वो तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बहुत चलता है।
हाँ, हालांकि कई लोग मानते हैं कि वो जूंग के सिद्धांत का काफी सरलीकरण है, पर है वो उसी पर आधारित। उसने जूंग के इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट जैसे कॉन्सेप्ट्स को करोड़ों लोगों तक पहुंचा दिया।
सही बात है।
आज हम आम बोलचाल में आर्किटाइप, शैडो, पर्सोना, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, सिंक्रोनिसिटी जैसे शब्द इस्तेमाल करते हैं, अक्सर ये जाने बिना कि ये सब जूंग की देन है।
ये बात तो है।
हाँ, और यहाँ ये बताना भी शायद जरूरी है निष्पक्षता के लिए कि 1930s के दशक में नाजी जर्मनी के समय में एक इंटरनेशनल साइकोथेरेपी सोसाइटी की अध्यक्षता को लेकर उन पर कुछ विवाद भी रहा। उन पर नाजी सहानुभूति के आरोप लगे थे।
अच्छा।
हालांकि उन्होंने बाद में इसके स्पष्टीकरण दिए और कई स्टडीज में उन्हें सीधे तौर पर नाजी समर्थक नहीं माना गया। उन्होंने यहूदी सहयोगियों की मदद भी की, पर हाँ, ये उनके जीवन का एक कॉम्प्लिकेटेड पहलू है जिस पर बहस होती रहती है।
तो कुल मिलाकर अगर आज देखें तो जूंग आज भी क्यों रेलेवेंट है, क्यों हमें उन्हें पढ़ना या जानना चाहिए?
मेरे ख्याल से इसलिए क्योंकि उन्होंने आधुनिक इंसान की जो सबसे गहरी समस्या है शायद, उस पर उंगली रखी।
और वो क्या है?
अपनी जड़ों से कटना, अपनी आत्मा से, अपने गहरे स्वयं से दूर हो जाना, जिंदगी में अर्थ की कमी महसूस करना। आज की जो भागदौड़ भरी जिंदगी है, जो पूरी तरह बाहरी चीजों पर फोकस है, उसमें हम अक्सर अपने अंदर की दुनिया को बिल्कुल भूल जाते हैं। जूंग हमें उसी भूली हुई दुनिया की, उसकी इंपॉर्टेंस याद दिलाते हैं।
उनके कुछ कोट्स भी हैं जो बहुत मशहूर हैं और उनकी सोच की झलक देते हैं।
हाँ बिल्कुल, जैसे एक बहुत पावरफुल कोट है, जब तक आप अचेतन को चेतन नहीं बनाते, वह आपके जीवन को निर्देशित करेगा और आप उसे भाग्य कहेंगे।
वाह, मतलब
सीधा है।
हाँ।
अगर हम अपने अंदर छिपी ताकतों को, अपनी अनजानी इच्छाओं को, अपनी शैडो को नहीं समझेंगे, उन्हें जानेंगे नहीं, तो वही चीजें अनजाने में हमारी जिंदगी को कंट्रोल करती रहेंगी और हम कहेंगे ये तो मेरी किस्मत ही खराब है, जबकि चाबी हमारे अंदर ही है। सेल्फ नॉलेज ही असली आजादी है।
बहुत खूब। और एक और है, बाहर देखने वाला सपना देखता है, भीतर देखने वाला जागता है।
बिल्कुल। Who looks outside dreams, who looks inside awakens. ये मैं बाहरी दुनिया की चकाचौंध से, दूसरों की एक्सपेक्टेशन से हटकर अपने अंदर झांकने को कहता है। असली समझ, असली जागृति वो अंदर की यात्रा से मिलती है।
एक और कथन जो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लगता है, प्रकाश की आकृतियों की कल्पना करने से कोई प्रबुद्ध नहीं होता, बल्कि अंधकार को सचेत बनाने से होता है।
हाँ, one does not become enlightened by imagining figures of light, but by making the darkness conscious. ये सच्ची होलनेस, सच्ची पूर्णता की बात है। सिर्फ अच्छी अच्छी पॉजिटिव बातें सोचने या वैसा दिखने की कोशिश करने से काम नहीं चलेगा। हमें अपने अंदर के अंधेरे को, अपनी कमजोरियों को, अपनी शैडो को फेस करना होगा, उसे समझना होगा, उसे इंटीग्रेट करना होगा। उसी से हम पूरे बनेंगे, सिर्फ आधे अधूरे नहीं।
और रिश्तों पर भी उनका एक खूबसूरत विचार है। दो व्यक्तित्वों का मिलन दो रासायनिक पदार्थों के संपर्क जैसा है, यदि कोई प्रतिक्रिया होती है तो दोनों बदल जाते हैं।
हाँ, the meeting of two personalities is like the contact of two chemical substances. If there is any reaction, both are transformed. ये दिखाता है कि जो गहरे मानवीय रिश्ते होते हैं, दोस्ती, प्यार, थेरेपी, वो हमें कैसे बदल सकते हैं। हम पहले जैसे नहीं रहते।
सच में? अच्छा, जुंग से जुड़े कुछ और रोचक बातें, कुछ कम ज्ञात पहलू।
हमने रेड बुक की बात की, जो सालों तक एक तरह से रहस्य बनी रही। ये अपने आप में एक कहानी है।
हाँ,
या फिर उनका ज्योरिक झील के किनारे अपने हाथों से पत्थर का एक टावर बनाना, बोलिंगन टावर। वो उनके लिए सिर्फ एक घर नहीं था, वो उनके मानस का, उनकी साइकी का प्रतीक था, जिसे वो धीरे धीरे परत दर परत बनाते गए, जैसे जैसे उनकी समझ बढ़ती गई।
अपने हाथों से बनाया पूरा टावर?
हाँ, काफी हद तक। और उनकी यात्राएं भी थीं, वो सिर्फ किताबी कीड़े नहीं थे, वो सच में दुनिया घूमे।
कहाँ कहाँ गए थे?
वो अफ्रीका थे, केन्या, युगांडा, भारत आए, अमेरिका जाकर नेटिव अमेरिकन ट्राइब्स के साथ रहे। वो देखना चाहते थे कि क्या सचमुच मानव मानस की कुछ संरचनाएं, कुछ मिथक, कुछ प्रतीक यूनिवर्सल हैं, क्या कलेक्टिव अनकॉन्शियस सच में है।
और क्या पाया उन्होंने?
हाँ, उन्हें लगा कि हैं। बहुत सी समानताएं मिली उन्हें अलग अलग कल्चर्स में। और उनकी एक और खास बात थी, पुरानी रहस्यमयी विद्याओं में उनकी गहरी रुचि, जैसे कीमिया, एल्केमी या ग्नोस्टिसिज्म।
एल्केमी, वो सोना बनाने वाली?
हाँ, पर जुंग उसे सिर्फ सोना बनाने की विधि नहीं मानते थे। उन्हें लगता था कि ये असल में आत्मा के परिवर्तन की, इंडिविजुएशन की प्रक्रिया के गहरे मनोवैज्ञानिक प्रतीक हैं, जिन्हें उस समय के लोग केमिकल भाषा में कह रहे थे।
अच्छा, ये तो बिल्कुल नया पर्सपेक्टिव है।
हाँ, तो जुंग का पूरा जीवन ही जैसे एक खोज थी, बाहरी दुनिया की भी और उससे कहीं ज्यादा भीतरी दुनिया की। बिल्कुल।
उनका काम हमें यही याद दिलाता है कि हम जो सतह पर दिखते हैं ना, उससे कहीं ज्यादा गहरे हैं, ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं। हमारी चेतना तो बस टिप ऑफ द आइसबर्ग है।
सही कहा।
आज की इस भागदौड़ भरी, इतनी एक्सटर्नल चीजों पर फोकस वाली जिंदगी में हम अपने अंदर की आवाजों को, अपने सपनों को, उन अजीब से लगने वाले ख्यालों या संयोगों को कितना वक्त देते हैं। जुंग का काम हमें एक पल रुककर ये सोचने पर मजबूर करता है।
हाँ, वो जैसे हमसे पूछ रहे हूँ, क्या जिंदगी का असली खजाना, असली समझ सिर्फ बाहरी सफलता, बाहरी चीजों में है, या शायद उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे अपने मन की उन गहराइयों में छुपा है जिन्हें हमने कभी कभी ठीक से टटोला ही नहीं। ये सवाल आज शायद पहले से भी ज्यादा मायने लगता है।
इस पर वाकई सोचने की जरूरत है।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ, जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।